और पांचवी चीज़, मखलूक की मदद कीजिए। खैरुन्नास कौन?
लोगों को नफा देना।
नफ़ा दे, अनफ़ाहुम, तो मखलूक की मदद कीजिए, जिस तरह कर सकते हैं करें, मुस्लिम की करें, गैर मुस्लिम की करें, किस की भी करें, मदद कीजिए। और आप देखेंगे कि जितना आप दूसरों को देने वाले बनेंगे ना, आपको अपनी ज़िंदगी से प्यार हो जाएगा कि अल्लाह तूने मुझे मार के क्या करना है, मैंने क्या करना है मार के, अल्लाह मुझे दूसरों की खिदमत करने दे, अभी मेरे से किसी को खैर दे दे, कोई मेरे से फ़ायदा उठा ले, अल्लाह अभी जिस्म में ताकत है, हिम्मत है, आफ़ियत है, ए अल्लाह तू मुझसे कोई अच्छा काम ले ले। आप देखिए कि बच्चों की तरह लजाएं, अल्लाह सुबहान तआला से मांगिए कि अल्लाह मुझे नफ़ा मंद बना, और छोटी छोटी चीज़ों से शुरू कीजिए। आप देखेंगे कि एक दिन आएगा कि आप खुद अपनी नज़रों में भी बड़े प्यारे हो चुके होंगे, आपको खुद से महसूस होगा कि वाकई मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद है। और मैं अक्सर सोचती हूँ इस बात को भी कि जो लोग अपने लिए सिर्फ जी रहे, सुबह उठे, खाया पिया, रोटी पानी, चलो फिर वो भी नफ़ा है, बहुत प्यारा नफ़ा है, लेकिन आप सोचिए कि मखलूक अल्लाह का कुंबा है, जो अल्लाह के कुंबे की टेक केयर करे, फिर अल्लाह उस बंदे की कितनी कदर करेगा। तो ज़रूरत है इस बात की कि अपनी ज़ाती ज़िंदगी के गमों, परेशानियों, तकलीफ़ों को पीछे डालिए, जो होगा देखा जाएगा, कल देखेंगे जो होगा, आज फ़िक्र करनी है। और आप ज़िंदगी में दूसरों के नफ़े के बनते जाएं, आप देखेंगे अल्लाह ताला आपको दूसरों के दिलों में रखेगा। किसी ने कहा कि रहने की सबसे अच्छी जगह क्या है, कहा दिल, दिलों में रहिए। लोग घरों में रहते, जगह ढूंढते, मकान ढूंढते, आप मखलूक की खिदमत करें, उसके साथ अपने ताल्लुक़ को बेहतरीन तरीके से जोड़ते जाएं, आप देखेंगे कि लोग दुआएं भी देंगे। आपको ऐसे लगेगा कि जैसे कोई खून का रिश्ता भी इतना आपके लिए दुआगो ना हो जितना अल्लाह ताला आप से नफ़ा लेने वालों के दिलों में आपकी मोहब्बत डालेगा। तो आज इसकी नियत करनी है, इसका इरादा और ख्वाहिश भी करनी है। फिर आप देखिए कि दुनिया क्या है, आप और मैं क्या कहते हैं, हम कहते हैं सब कुछ दुनिया ही तो है, हालांकि इमाम अहमद बिन हम्बल क्या कह के गए कि सुकून तो जन्नत में मिलेगा, दुनिया तो हादसों और अलमी और फितनों की जगह है। और सूरत बलद आयत 4, वलकद खलकनल इंसान नफी कबत, हमने इंसान को बड़ी मशक्क़त में पैदा किया, रोता हुआ आता है बच्चा दुनिया में और रो रो के चला जाता है। सुकून तो उस दिन मिलेगा जिस दिन अल्लाह ने कह दिया कि या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिकि राधियतम मर्दिया। और इब्ने माजा 4104, आपने फरमाया तुम में से किसी के लिए भी दुनिया में इतना ही काफ़ी है जितना के मुसाफिर का तोशा। ज़रा सा अपनी दुनिया पे नज़र डालें, मुसाफिर इतना सामान लेकर सफ़र करेगा तो सफ़र आसान होगा कि मुश्किल? मुश्किल होगा ना। तो ये हमारी ज़िंदगी की मुश्किलें हैं, हम अपग्रेड ही नहीं हो पा रहे, और पूरी अपग्रेडिंग ख़त्म होती है तो 1-2 साल बाद दोबारा नए सिरे से शुरू हो जाते हैं एक एक चीज़ को सेट करने। फिर इस तरह आप देखिए सही मुस्लिम की रिवायत 2203 है कि मोमिन दुनिया की तकलीफ़ों से और इसकी चोट वगैरह से आराम पाता है और अल्लाह की रहमत की तरफ जगा करता है, यानी मोमिन के लिए मौत एक तोहफा है। और वो हदीस जो हज़रत अनस बिन मालिक से हम तक पहुंची, सही मुस्लिम 7088, सुबह के भी सबक में जो क़यामत का बयान है उसमें भी ये आई थी आज कल कि क़यामत के दिन एक ऐसे शख्स को लाया जाएगा जिसके लिए दोज़खी होने का फ़ैसला हो गया, लेकिन दुनिया में बहुत दौलतमंद था, ऐश वाली ज़िंदगी थी, एक दफ़ा जहन्नुम में गौता दिया जाएगा, फिर पूछा जाएगा आदम के बेटे क्या तूने कभी आराम दुनिया में देखा था, क्या तुझ पर कभी चैन भी गुज़रा, तो वो कहेगा अल्लाह की कसम कभी नहीं, ऐ मेरे रब। और अहले जन्नत से लाया जाएगा जो दुनिया में सब लोगों से सख्त तकलीफ़ में रहा, तो जन्नत में एक बार गोता दिया जाएगा, फिर इससे पूछा जाएगा तो वो कहेगा अल्लाह की कसम मुझे तो कभी तकलीफ़ नहीं गुजरी, मैंने तो कभी शिद्दत और सख्ती नहीं देखी। तो ये दुनिया, इसके लिए हम भागते हैं, तो लिहाजा छोटा सा एक गैप लीजिए और सोचिए कि क्या हमें फ़क्र का शिकवा करना चाहिए। देखिए ना, ज़मीन से आसमान तक की हर चीज़ फ्री है आपके लिए, ज़मीन पे बैठिए कोई पैसे नहीं मांगता, ठीक है, किसी ज़मीन पे घर बनाएंगे तो घर वाला तो किराया मांगेगा आपसे, अल्लाह नहीं मांगता। आप आसमान को देखिए, कोई टिकट नहीं है। सूरज को देखिए, सितारों को, फूलों को देखिए, खेत, कुछ भी। तो दुनिया मुस्कुरा रही है, आप भी मुस्कुराइए। ये है थोड़े में खुश रहने वाले लोग। सहराओं में, जंगलों में, देहातों में, गांवों में खुश हैं, और शहरों वाले रो रहे हैं बस दफ़ा। तो आज अपने इस दिन को प्रोडक्टिव बनाएं। चलिए, अगली भी चीज़ बड़ी प्यारी है, नरमी। मकसूद के हसूल में मदद देती है, यानी नरमी ज़िंदगी में गमों को दूर करती है। कैसे? नरमी के बारे में बहुत सारी बातें गुजर चुकी हैं। मसलन, कब हाजत तलबी में रिफ़ की सिफारिश रद्द नहीं होती, यानी आप किसी से कोई हाजत रखे और कोई चीज़ तलब करें लेकिन आप नरमी इख्तियार करें तो लोग आपकी सिफारिश को मान जाएंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि दो दीवारों के बीच अगर तंग रास्ता हो जिसमें बस एक ही कार गुजर सकती हो, तो ये कार तभी गुजरेगी जो ड्राइवर एहतियात और देखभाल के साथ चलाएगा। अगर वो तेज़ रफ्तारी से इसे उबूर करेगा तो दाएं बाएं टकराएगा और गाड़ी ख़राब होगी। रास्ता भी वही है, गाड़ी भी वही, दाखिल होने का रास्ता मुख्तलिफ होता है। आसानी का नतीजा और सख्ती का कुछ और, दोनों का फ़र्क है। अपने सहन में हम छोटा सा पौधा लगाते हैं, जब इस पर थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे तो इसे फ़ायदा होगा। अगर यकबारगी डाल देंगे तो पौधा जड़ से ही उखड़ जाएगा। कभी किया हो तो आप इंजॉय करेंगे इस जुमले को। पानी दोनों एक ही हैं लेकिन तरीक़ाए अमल अलग अलग हो गया। जो शख्स कपड़े नरमी से उतारे तो कपड़े ठीक रहेंगे, और जो सख्ती और तेज़ी से खींचेगा तो इसे शिकायत होगी कि कपड़ा फट गया, बटन टूट गए। और लतीफ़े की बात है कि जब बिरादरान यूसुफ छूट मूट एक कमीज़ लेकर आए और दावा किया कि यूसुफ को भेड़िया खा गया, इनका झूठ यूं पकड़ा गया कि उन्होंने कपड़ा नरमी से उतारा था इसलिए वो फटा नहीं होता। अगर भेड़िए ने खाया होता तो आहिस्तगी से थोड़ी उतारता, वो तो कपड़े को बुरी तरह फाड़ डालता। हमारी ज़िंदगी में नरमी की बहुत ज़रूरत है, यानी अपने आप से नरमी की ज़रूरत है हमें, क्योंकि तुम्हारे नफ्स का भी तुम पर हक है। और दोस्तों में नरमी की, कि अल्लाह हर चीज़ में नरमी पसंद करता है। औरत यानी बीवी के साथ नरमी करो, फरमाइन नाजक आबगीनों से नरमी से पेश आओ। तुर्कों ने दरिया में लकड़ी के जो पुल बनाए थे उनमें एक में लिखा था कि आहिस्ता आहिस्ता चलिए, क्योंकि आहिस्ता चलने वाला गिरने से बचेगा, जबकि जल्दी मचाने वाला दरिया के बीच में जा गिरेगा। मुल्क शाम के एक अदीब हैं, अल सलमिया जगह में रहते थे। उसके पास मोटरसाइकिल थी। इसने अपनी डायरी में लिखा कि एक पुल पर मैं तेज़ी से मोटरसाइकिल से गुज़रा, जब बीच दरिया में पहुंचा, तेज़ी से जा रहा था, दाएं बाएं जो देखा तो तवाज़न बिगड़ गया, मुझे सामने दिखाई ना दिया और मोटरसाइकिल समेत दरिया में गिर पड़ा। फिर आगे क्या हुआ, एक लंबा किस्सा है। तो नरमी, नरमी और नरमी। बस यूरोपी शहरों में गिलगिश्त और गुलाब के बाग के दाखिली गेट पर ही लिख देते हैं कि आहिस्ता चलें, क्योंकि सुबह खराम यानी आहिस्ता चलने वाला सुबह खराम को इन नाजुक पौधों का ख्याल न रहेगा और वह इनकी बर्बादी का बायस बन जाएगा। महज अपनी बेपरवाही और अंधाधुंध दाखले के बायस, यानी तेज़ी में पता नहीं कितने फूलों को ही आप झाड़ देंगे। ज़रा सी सख्ती से गुजरेंगे तो आप देखिए कि फूल की पत्तियां भी बिखर जाएंगी। एक तरबियती कौल है कि चिड़िया शहद की मक्खी की तरह नरमी नहीं बरत सकती। बात तो सच है। हदीस में मोमिन की मिसाल बताई गई कि मोमिन शहद की मक्खी की तरह है, वो पाकीज़ा खाती है और पाकीज़ा पैदा करती है, किसी डाली पर बैठती है तो इसे तोड़ती नहीं। शहद की मक्खी के वजूद का एहसास भी फूल को नहीं होता, वो आहिस्तगी से इसका रस चूसती है, नरमी से अपना मतलब पूरा करती है। और चिड़िया कमज़ोर जिस्म के बावजूद बालियों पर अपने उतरने का हंगामा मचा देती है। उतरती है तो यकदम और उड़ती है तो फुर से। एक हिंदी मुसव्विर की बात मुझे अभी तक याद है, जिसने एक शाहकार पेंटिंग बनाई थी। उसका खुलासा यह है, दानों से भरी गेहूं की एक बाली है, जिस पर एक चिड़िया बैठी है। बादशाह ने इस पेंटिंग को अपने दीवान की दीवार पर लगाया था। लोग बादशाह को मुबारक देने आए और मुसव्वर की तारीफें की। इसी भीड़ भाड़ में एक उदास सा गरीब आदमी आया। इसने तस्वीर पर एतराज़ किया और इसे गलत बताया। लोगों ने इस पर बुरा मनाया और शोर मचाया कि उसने सबके खिलाफ बात की है। बादशाह ने इसे नरमी से बुलाया और कहा कि तुम क्या कहते हो। अब सुनिए ज़रा उस बूढ़े की लॉजिक। कहने लगा, ये तस्वीर गलत है, इसकी पेशकश भी ठीक नहीं। कहा, क्यों? बोला, क्योंकि मुसव्विर ने यह दिखाया है कि चिड़िया बाली पर उतरी, लेकिन बाली बिल्कुल सीधी खड़ी है। इसे तो फौरन मुड़ना चाहिए था। बाली शकील होती है, लचीली नहीं, यानी उसमें बेंडिंग नहीं होती, वो सीधा रहता है। तो उसमें उसने उसको लचक में दिखा दिया। बादशाह ने और लोगों ने भी कहा, तुम ठीक कहते हो। फिर तस्वीर उतरवा दी गई और इनाम भी पेंटर से वापस लिया गया। समझे? यानी बाली होती है ना गंदम की, उसका ऐसे मोड़ के तो उस पर चिड़िया बिठाई। उसने कहा, नहीं होगा, बाली हमेशा सीधी रहती है, चिड़िया इस पर इस तरह बैठेगी तो ये लचक लेगा ही नहीं। मुराद नरमी है, यानी असल चीज़ यह है कि ज़िंदगी में जब नरमी आ जाती है तो बहुत खूबसूरतियाँ आती हैं। इलाज के लिए भी कोई तबीब नरमी की नसीहत करते हैं, इसी तरह काम बराबर करने और लेने देने में भी। क्योंकि जल्दबाजी में कोई अपने ही हाथ से नाखून उखेड़ लेता है, कोई दांत तोड़ लेता है, किसी का लुकमा अटक जाता है, क्योंकि बड़ा लुकमा तोड़ा चबाया अच्छी तरह नहीं जाता। पानी आहिस्ता भी चलता है, उछलकर भी। हवा तेज़ चलती है और तबाही मचाती है। सलफ़ में एक का कॉल था कि उन्होंने कहा, यह भी आदमी के तफक्कुह में से है, यानी उसके गौर व फिक्र करने में है कि आदमी अपने घर में नरमी से दाखिल हो, नरमी से निकले, आहिस्ता आहिस्ता से कपड़ा पहने, आहिस्ता से जूता उतारे और सवारी पर बैठे। चीज़ों को लेने में जल्दी यानी उजलत, तैश और गज़ब इसके लिए काफ़ी है कि फ़ायदा खो जाए, ज़रर पहुँचे, क्योंकि खैर रिफ़ पर मबनी है। फरमाए, रिफ़ जिस चीज़ में भी होगा इसे जीनत देगा, और जिस चीज़ से भी निकाल लिया जाएगा उसमें ऐप डाल देगा। लोगों से मामला करने में नरम रवि से दिल मुसख़र होते हैं, रूहें छुकती हैं और नफूस कायल हो जाते हैं। इंसानों में जो साहिब रिफ़ हो वो हर भलाई की कुंजी है। सरकश लोग और जलने वाले दिल तक भी इसकी तरफ लपक पड़ते हैं। अल्लाह की रहमत से ही तुम नरमी वाले हो। फबिमा रहमत मिनल्लाह लिनता लहुम, किसको कहा गया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अगर तुम सख्त दिल होते तो ये लोग तुम्हारे इर्द गिर्द से छट जाते। शायर ने कहा, रोशन चांद रिफ़ इख्तियार करो, तुंदो तेज़ थाड़ने वाली हवा न हो, तूने चमक कर मेरा चेहरा चमका दिया, हमारी जुल्मतों में तेरा चेहरा ताबनाक है, हवा जब तेज़ चलती है तो मकानात को ढाटती चली जाती है। ज़रा सा सोचिए जो कुछ पड़ा है, इसके बाद दिल में क्या आया? नरमी, नरमी इख्तियार कीजिए। और ताहा हुसैन ने अलैयाम में अपने बारे में गायब के सीगे में लिखा, वो लड़का दूसरे इंसानों की तरह ही समझता था, जैसे लोग पैदा होते हैं वो भी पैदा हुआ, जैसे वो जीते हैं ऐसे ही वो जी रहा था। उसने अपना वक्त और नशात भी इन्हीं की तरह तकसीम कर रखा था, लेकिन वो ना किसी से मानूस था, ना किसी चीज़ से मुतमईन, और लोगों और चीज़ों के माबैन एक पर्दा सा था, जिसका ज़ाहिर रजामंदी और अमन था लेकिन अंदर से जी खोलता। इस तरह खौफ और कुलक का एहसास होता। वो हदे निगाह तक एक वहशतनाक सहरा में था, जिसमें निशानात भी गुम थे, ना रास्ता दिखाई देता, ना वो मंजिल पर जहाँ पहुँचे। इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह कहते हैं, दिल पर सुरूर के ऐसे लम्हात भी गुजरते हैं कि अगर अहले जन्नत को भी मिल जाते तो वो बड़ी अच्छी ज़िंदगी में रहते। इब्राहिम बिन अदम कहते हैं, हमारी ज़िंदगी ऐसी ही है कि अगर इसकी खुशी का एहसास बादशाहों को हो जाए तो तलवारों से हम पर चढ़ दौड़े। तो क्या सीखा? ज़रा सा दोहरा लीजिए, नरमी आपके मकसूद को हासिल करने में आपकी मददगार होती है। कोई काम भी जो आप करना चाहते हैं आप नरमी से करें, ज़्यादा अच्छा करेंगे। चलिए लिखिए, नरम मिजाज लोग कौन होते हैं? पहली बात है कि अल्लाह ताला के पसंदीदा लोग होते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत में से एक आदत नरमी थी। ऐसे लोग लोगों में मकबूल होते हैं, लोग उनको कबूल कर लेते हैं। कह लीजिए, मुश्किलात का खंदा पेशानी से मुकाबला करते हैं। زندگی میں مثبت رویہ اختیار کرتے ہیں اور جنت کے مستحق ہوں گے۔ دعا کریے اللہ ہمارے اندر نرمی ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ کو نرمی کیسی لگتی ہے؟ سورہ فرقان 63 عباد الرحمن کے ایک صفت ہے کہ وہ زمین پر چلتے ہیں خونن، نرمی سے، اور جب جاہل لوگ ان سے بات کرتے ہیں تو یہ ان کو سلام کہہ دیتے ہیں، یعنی ٹال دیتے ہیں۔ اور سورہ طٰہٰ 44، اسے نرمی سے سمجھاؤ کہ شاید وہ سمجھ لے یا ڈر جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی کی نظر میں نرمی کیا تھی؟ چند احادیث نوٹ کیجئے۔ ابن ماجہ کی روایت 3689، حضرت عائشہ راویہ ہے کہ بے شک اللہ نرمی کرنے والا اور سارے کاموں میں نرمی کو پسند کرتا ہے۔ اور سلسلہ صحیحہ کی روایت 2436، عائشہ رضی اللہ عنہا سے آپ نے فرمایا، نرمی کیا کرو، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کسی گھر والوں کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو نرمی کے دروازے کی طرف اس کی رہنمائی کر دیتے ہیں۔ اور صحیح مسلم 6598، جو شخص نرمی سے محروم ہے وہ بھلائی سے محروم ہے، اللہ تعالیٰ میں محروم لوگوں میں نہ کریں۔ اور گیپ میں کیا سیکھا وقفے میں ہم نے؟ پہلی بات ہے کہ کبھی کبھی کامیاب نظر آنے والے اندر سے وحشتوں کا شکار ہوتے ہیں، اور عموماً فیمس لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ بعض اوقات مشکلوں میں گرفتار لوگ دلی سکون رکھتے ہیں، یہ کون ہے؟ جو اللہ سے جڑے اور اللہ سے جوڑنے والے ہوتے ہیں۔ تو دلوں کا سکون اللہ کی یاد میں ہے، دنیا کے بڑھنے کا دل کے سکون سے کوئی تعلق نہیں۔ جتنی دنیا بڑھتی ہے بلکہ اتنا ہی دل پہ بوجھ بڑھتا ہے۔ اللہ ہمیں اس سکون کو لینے والا بنا دیں۔ اگلی چیز، قلق کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ قلق کہتے ہیں فکر، ریگریٹ کہہ لیجئے انگلش میں، سمجھ آ جائے گی بات، یعنی ہر وقت ریگریٹ میں ہی رہنا۔ اس گفتگو سے مقصد اس نتیجے تک پہنچتا ہے کہ آدمی قلق اور اضطراب کا شکار نہ ہو، قضاء ربی کو مان لے اور ماضی پر ندامت محسوس نہ کرے۔ میں اپنے امتحان میں ساتھیوں کے مقابلے میں اول آنا چاہتا تھا، مذاکرے میں اپنے آپ کو تھکاتا، جب امتحان دے دیا تو نتیجے کو لے کر خوف اور اضطراب میں پڑا رہا۔ گھر میں امتحان کے پرچے الٹ پلٹ کر جوڑ گھٹاؤ سے اپنے جوابوں کو جانچا اور ان کی تصحیح کرتا رہا، یعنی چیکنگ کی، حتیٰ کہ اضطراب کے مارے دانتوں سے انگلی کاٹ ڈالتا۔ پھر نتیجہ آتا کبھی خوشکن کبھی ناگوار، یعنی ناخوشگوار، لیکن مجھے یاد نہیں کہ کبھی بھی میرے اضطراب نے نمبروں میں اضافہ کر دیا ہو، جواب ٹھیک کر دیے ہوں یا مجھے پہلی پوزیشن دلا دی ہو۔ یعنی نمبروں کی زیادہ فکر نہ کیجیے۔ میں آفتوں سے بے پرواہ ہو کر رہتا ہوں، کیونکہ ان کی پرواہ سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا یا نہیں ہوا، تو کیا پتہ چلا؟ ریگریٹ کو زندگی سے نکال دیجئے۔ بعض لوگ صرف ریگریٹ میں رہتے ہیں، اس لیے اپنی زندگی سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ تو ماضی کا قلق ماضی کو بدل نہیں سکتا، بلکہ انسان قنوتی ہو جاتا ہے۔ قنوتی کون ہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، یعنی مایوس۔ اسی طرح ماضی کا قلق نہ حال کا لطف اٹھانے دیتا ہے، نہ مستقبل کی منصوبہ بندی کرنے دیتا ہے۔ اور ماضی جتنا بھی دردناک ہوگا، گناہوں سے بھرا ہو، اس پر قلق صرف حسرت میں اضافے کا باعث بنتا ہے، جبکہ اسے سبق لینا ماضی کی غلطیوں کو دہرانے سے بچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ زمر 53، کہہ دیجئے کہ میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، بالیقین اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے اور وہ واقعی بڑی بخشش والا اور بڑی رحمت والا ہے۔ تو مومن کی زندگی میں مایوسی کا کیا کام؟ اور اگر راحت لینی ہے تو کیا کیجئے؟ قدرے کفاف میں راحت، یعنی صرف کفایت جتنی چیز بھی ہو نا، اتنا سا کھانا کہ آپ بس مرنے سے بچ گئے، اتنے کو کپڑے کے موسم کی شدتوں میں محفوظ ہو گئے، تو کافی ہے۔ ये कहते हैं कि मैं एक इदारे रियाज साइंस इंस्टीट्यूट यदि माहदुर रियाजुल इलमी में गया, घर वालों को जुनूब में छोड़ दिया, अपने चचाओं के साथ रहने लगा। जहाँ ज़िंदगी सादा थी, तालीम में मेहनत और आने जाने और घर के कामों में मुशक्क़त होती थी। 15 मिनट से आधा घंटा रोज़ सुबह मैं भी पैदल जाता और जोहर में वापस आना होता, और घर के लोगों के साथ सुबह दोपहर और शाम खाना बनाने में साथ देता, घर में झाड़ू देता, सामान ठीक करता और बावर्ची खाने को तरतीब देता, मुराजे के जो भी काम मतलूब थे सबक को दोहराता, इंस्टीट्यूट के कामों में शिरकत भी रहती और अच्छे नंबरों और पोजीशन से पास भी होता। मेरे पास बस एक ही कपड़ा था, इसी को धोकर पहनता था, घर में भी, स्कूल में भी और तकरीबात में भी। सोचिए, क्योंकि आमदनी बहुत कम थी, खाने का खर्चा, घर का किराया और दूसरी चीज़ें सब इसी में करनी होती थी, इसलिए गोश्त भी कभी खाता और फल तो बहुत कम खाया करता। हमेशा काम, मुज़ाकिरा और मुतालिया में मसरूफ़ रहता। तफरीह के लिए महीने में एक दो बार ही कहीं निकला करता। सारे मजामीन लगभग 17 थे, यानी 17, जिसमें अंग्रेज़ी, इंजीनियरिंग, अलजेब्रा और साइंस की दूसरी शाखें थीं। दीनी और अरबी के मज़मून अलग थे। उलाए मुतवस्सिता यानी दरमियानी जो स्टेज थी पढ़ने की, उससे ही अलमाहदुल इल्मी से अदबी किताबें मैं निकाला करता। मुताले का शौक़ इतना था कि किताब लेकर साथियों से बिल्कुल अलग थलग हो जाता। इस दराज नफसी से, यानी अपनी इतनी बातें करना या जो भी अपने ऊपर कहानी है, कहते कि इस दराज नफसी से कहना ये है, यानी मेरी ये कहानी सुनकर जो बात आप मेरे से समझे वो क्या है कि इस मुशक्क़त, थकन, सादगी और कम आमदनी के बावजूद इत्मीनान था, दिल में सुकून था, पूरी नींद लिया करता। ऐसे ही ज़िंदगी चलती रही। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अच्छा मकान मिला, लजीज खाना, बहुत से कपड़े और आसाइश की ज़िंदगी नसीब हुई, लेकिन अब पहले जैसी नफसियात न थी, यानी जितना पहले इंजॉय करता था। मशागिल बढ़ गए, कदूरतों में इजाफा हुआ, यानी साथ रहने वाले हसद बुगस रखने लगे। ये इसकी दलील है कि चीज़ों की कसरत खुशबख्ती और राहत नहीं, इसलिए ये ना समझिए कि हुस्नो मलाल और रंजो गम का सबब कम आमदनी और ज़िंदगी में आराम के कम असबाब का होना है, ये दुरुस्त नहीं। ज़्यादातर लोग जो किफ़ायत के कदर ही पर रहते हैं, वो दौलतमंदों से ज़्यादा खुश रहते हैं। बात तो है पते की। आज भी आप अपने रिश्तेदारों में देखिए, जो मुतवस्सत है ना, वो ज़्यादा हॉस्पिटेबल हैं, वो ज़्यादा खुश हैं, उनके घरों में जाकर आप ज़्यादा अपनाइत महसूस करेंगे, इसके बरक्स दूसरी तरफ। तो क्या सीखा कि किफ़ायत पर राज़ी रहिए, इसी में राहत है। दुनिया थोड़ी, गम भी थोड़े, दुनिया वसी, गम भी बड़े। गुरबा के बच्चे खाना मिलने पर ही शुक्र करते हैं, वो भी अगर अल्लाह ने नसीब में रखा हो, और अमीरों के बच्चे पसंदीदा खाना ना मिलने पे मुंह बसोरते हैं। सिर्फ किफ़ायत करने वाली दुनिया बहुत सी नाफरमानियों से बचा लेती है इंसान को। तो माल कम होगा तो कम माल से गुनाह और इसराफ दिखावा भी कम होगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा रावी हैं, सही मुस्लिम की रिवायत, 7441, आपने दुआ की कि अल्लाह आले मोहम्मद का रिस्क ज़िंदगी बरकरार रखने जितना कर दे। अल्लाह के नबी की तो ये दुआ थी, और आज उम्मत क्या कहती है, हल में मज़ीद, हल में मज़ीद। तो फिर आज हमने ये सीखा कि ज़िंदगी को मुख्तसर रखिए, डिसाइसिव रहिए, अच्छे फ़ैसले कीजिए, शक वाली चीज़ों को ज़िंदगी से निकाल दीजिए और अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहिए। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे ये बात पूरी हुई। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें अपनी इस्लाह की तौफीक अता फरमाएँ, अल्लाह ताला हमें इसी पे बरकत दे और इसके ऊपर अपने आप को जमाने वाला बना दे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।